नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 78 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वैच्छाया नमो लोये सौवसानुनं नम्यूनजिनं वीरं अनंतवर्णानदं सनसहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुद केवली वणिदम्। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव जी ने टीका लिखी है, तात्पर्य वृत्ति, और इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं कारण कार्य नियम, ये दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर हम आगे 29 अंतिम ये पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। एक बार शास्त्रमाथी कहूँ हतु, यह तो ऊपर बात बताई थी कि देह देवल में वो अमृत के पूर है, भगवान आत्मा को कह दिया था, अब उस पर ये बता रहे हैं। एक बार शास्त्रमाथी कहूँ हतु, त्रण प्रकारना विग्रह शरीर कह्या छे। विग्रह का एक अर्थ शरीर भी होता है, विग्रह के बहुत अर्थ होते हैं, विग्रह मोड़ को भी कहते हैं, हाँ, और विग्रह निरोध यानी वो शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहे उसको भी विग्रह कहते, तीन अर्थ होते विग्रह के। तो यहाँ शरीर के अर्थ में कहते हैं त्रण प्रकारना विग्रह शरीर कह्या छे, त्रण प्रकारना शरीर, एक त्रिकाणी आनंद कंद प्रभु ए ज्ञान शरीर छे, समझाणु काय, यानी औदारिक तेजस कारमान की बात नहीं हो रही है। एक पुण्य पापना विकल्पनो समूह है विकार शरीर, एक लिया ज्ञान शरीर, एक लिया विकार शरीर, विग्रहम एने विग्रह कहो छे, विकार ने विग्रह कहो छे, ज्ञान स्वरूप ने विग्रह कहूं छे, अने आ शरीर तो विग्रह छेज, समझानु काय, શરીર વિગ્રહ છે એનાથી પણ રહિત છે, અને પુણ્યપાપના અસંખ્ય પ્રકારના વિકલ્પ થાય છે એ પણ વિગ્રહ છે। શરીર છે વિકાર રૂપ, એક શરીર છે સ્વરૂપ છે, એનાથી પણ ભગવાન જ્ઞાન વિગ્રહમ ભિન્ન છે, એ પૂર્ણ ભર્યો છે, એને ચાર ભાવથી અગમ્ય કહ્યો। ઉસકે એ વિષય અપના યે ચલ રહા હૈ, चार भावों से अगोचर है, अर्थात चार भावना आश्रय थी उत्पन्न नहीं थतु, ए त्रिकाणी नाथ नो आश्रय लेवाथी उत्पन्न थाय छे। परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा छे, पण विश्वास बैठवो कठिन पड़े छे। क्या कहना चाहते हैं, ये तो भगवान आत्मा तो परमात्म स्वरूप ही है, वो ऐसा कि ऐसा विद्यमान है, हर समय ऐसा ही है, अनादि से ही और अनंत काल तक रहेगा, परंतु उसका विश्वास ही बहुत कठिनता से हो जाता है। भाई बे बीड़ी सरकी पीवे त्यारे पायखाने जंगल उतरे, इतला पलखन, हवे इन्हें आम कहूं। भगवान तो एम कहे छे के जे छ आवश्यक करे छे ने, ए शुभ भावना आवश्यक करनार पण धर्म नथी, ए परवश छे स्वतंत्र नथी। छ आवश्यक व्यवहार छे ने, ए आवश्यकनु परिणाम आवे छे, भगवानना श्रीमुखेथी निकळेली वात छे, ए मुखारविंदथी छ आवश्यकनी व्याख्या आवे छे, ए आगममां रचना छे। ए मुनियों के जो छ आवश्यक है वो ऐसी बातें उनके होती है, और भगवान की वाणी में भी ऐसी बातें आई है, पण ए छ आवश्यकनो व्यवहार भाव जे छे ए पण परवश छे, એ પ્રાણી પરવશ છે, પરાધીન છે, બુદ્ધિ દીર્ઘ ચાહીએ, સ્વતંત્ર સ્વવશ નથી. અહીંયા તો ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાનનો પુંજ, એ પુરસ્વ ચાહીએ, પુંજ પુંજ. એ પૂર્ણનો આશ્રય લેવાથી આવશ્યક નામ જે ક્રિયા આવશ્યક કરવા લાયક છે એ ક્રિયા એ છે, અવશ્ય કરવા લાયક તો એ છે. ત્યાં પ્રવચનસારની 80મી ગાથામાં લીધું છે, જેને અરહંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાયનું જ્ઞાન થાય છે તેને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું છે. એ નિમિત્તથી વ્યાખ્યા કરી છે. અહીંયા તો સ્વ આત્મા એના ત્રણ ભાગનો વિચાર કરે કે આ દ્રવ્ય છે, આ ગુણ છે, આ પર્યાય છે, એ પણ વિકલ્પ અને રાગ અને પરવશ પરાધીન દુઃખી છે. હા હા, દેખી વિકલ્પ હૈ ને, વિકલ્પ હૈ તબ તક ઉસકા લક્ષ્ય હૈ, તબ તક સ્વ કા લક્ષ્ય નહીં હૈ. હા, તો અતિન્દ્રિય આનંદ કા અનુભવ નહીં હૈ તો દુઃખ હૈ, એ કહેતા હૈ. આખરી વાત છે. 80મી ગાથામાં તો પરદ્રવ્યની વાત કરી છે. અરહંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણે તે આત્માને જાણે, પેજ નંબર 30. તો પરદ્રવ્યનું જ્ઞાન તો અનંતવાર કર્યું છે, સમજાણું? ભગવાનના સમોસરણમાં અનંતવાર ગયો છે અને સીધી દિવ્યધ્વનિ સાંભળી છે. એને ભગવાનને બતાયા હુઆ માર્ગ દૂસરોં કે દ્વારા જૈસે હમે પ્રાપ્ત હોતા હૈ વૈસે, જીસકો કહે ને ઇનડાયરેક્ટ નહીં, ડાયરેક્ટ ડાયરેક્ટ ઉનકે મુંહ સે ભી સુના હૈ અનંતો બાર, યે કહે રહે, ઉસકા મર્મ છૂટ ગયા. ઉન્હોને જો બાત બતાઈ અપને શુદ્ધાત્મા કા લક્ષ્ય કરને કી, વો બાત છૂટ ગઈ. ભગવાન કી ભક્તિ કરતે રહે, ઉનકો હી દેખતે રહે, ઉનકી મહિમા ગાઈ, પરંતુ ઉન્હોને જી શુદ્ધાત્મા કી મહિમા બતાઈ થી ઉસકા લક્ષ્ય સ્વયં નહીં ક્યા. દેખો, હમ છોટે બચ્ચોં કો દેખતે હૈ, વો ક્રિકેટ દેખતે હૈ, ટીવી પર જો કુછ દેખતે હૈ, વો હાથ મેં બેટ લેકે તાબડતોબ ચાલુ કરી દેતે, વૈસા એક્શન મારતે કે નહીં મારતે. અરે હમ ક્યા કરતે, એ સબ સુનતે હૈ, સુનતે આ હા 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 કરતે, પરંતુ અરે યે જો બતાયા વૈસે પ્રયોગ કરને કા મન નહીં હોતા હૈ, ઇતના કહેકર બસ છોડ દેતે હૈ. એક ઘંટા હો ગયા, બહુત મજા આયા, સુનને મેં મજા આયા, જો સુના હૈ ઉસકો તાબડતોબ હમ વૈસે પ્રયોગ મેં લાને કી બાત નહીં સૂચતી હૈ, યહીં તક રુક જાતા હૈ જી. यहाँ क्या ना, बात सही है, प्रयोग ले लाने के पहले निर्णय बहुत आवश्यक बात है, यही करना है ना, उसमें लिए सभी चीजों की निर्णय चाहिए कि स्व क्या है, वो परद्रव्य क्यों किस अपेक्षा से कहा है. हाँ, देव का स्वरूप क्या है उसका निर्णय चाहिए, गुरु का स्वरूप का निर्णय चाहिए, उसके बिना आगे गाड़ी नहीं चलती है. ख्याल में आती है ना बात, ये सभी बातें उसमें अंदर है. देव गुरु शास्त्र तो मुख्य चीज है, ये सभी अपने न्याय शास्त्रों में पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की जाती है. वीतरागी और सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, अंतर बाह्य स्वरूप, उसकी बात होती है. यही बात यहाँ बता रहे कि सीधी दिव्य ध्वनि सांभळी छे, पेज नंबर 30, वो दूसरा नीचे से दूसरा पैराग्राफ लास्ट. महाविदेह मां अनंतवार जन्म्यो, क्योंकि जो काल को कुछ आदि ही नहीं है, कितने पीछे चले जाओ तो कितने कितने भव हमने कहाँ कहाँ बिताए होंगे ना. હા, પંચ પરાવર્તન માં આતા. મહાવિદેહમાં તીર્થંકર નો વિરહ ક્યારે હોતો નથી. અબ મહાવિદેહ મેં તીર્થંકર કા વિરહ નહીં હૈ, અન્ય ભી કેવલી હોતે રહેતે હૈ વહાં પર. અભી વર્તમાન મેં તો 20 જગ્હ હૈ તીર્થંકર, પરંતુ મહાવિદેહ કે જો હૈ જહાં તીર્થંકર હોતે હૈ, 160 ક્ષેત્ર હૈ. સબ જગ્હ અભી વર્તમાન મેં નહીં, પરંતુ અન્ય કેવલી ભી હોગે, ઉનકા ઉપદેશ ભી હોગા, ઉનકે જો કુછ હા ગંધકુટી વગેરે બાતે હોતી રહેતી હૈ, ભલે તીર્થંકર રૂપ સે નહીં, પરંતુ અન્ય કેવલી ભી વહાં વિદ્યમાન રહેંગે. ત્રિકાળ હા હોતે સામાન્ય અરિયંતો કી કેવલ ગંધકુટી હોતી હૈ वहां पर, नहीं मैं कह रही हूँ सामान्य से, हाँ वहां पर भी होते हैं ऐसा कुछ, ऐसा सुन पढ़ा था मैंने कहीं पर, अन्य केवलियों का भी अलग अलग वहाँ विद्यमान रहते हैं, वहाँ पर भी वो भी ऐसे जैसे कहें ना अंतरिक्ष में वो भी विराजमान रहेंगे। हाँ उनका उपदेश वगैरह ऐसा, हाँ हाँ, यानी उनके वहाँ गंधकुटी वगैरह नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, हाँ अन्यत्र होती है ना। हाँ सामान्य केवली जैसे वो रामचंद्र जी की भी बात आती है ना, श्री राम की, उनके भी वो केवली का आया था इस समय, यानी केवली का समोचरण भी कहते, छोटी जगह छोटे पैमाने पर जैसे समोचरण लगता है, वो तीर्थंकर की बात अलग है, अभी उसको कह सकते हैं क्योंकि गंधकुटी तो होती है और बाकी थोड़ी सभाएं भी होती है उनकी। हाँ उपदेश भी देते हैं उनके, हाँ हो सकते हैं, वो तीर्थंकर नहीं है, परंतु वो तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं है, अन्य केवली है। हाँ वो रामचंद्र के उसमें पद्म पुराण में आता है ना, उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं है उनका सम, हाँ हमेशा आता है ना, वो केवली को जाके पूछा उन्होंने कुछ, त्रिकाण माँ त्रिकाण ने जानना रो विरह क्या रे होते नती, क्या अन्याय क्या बताया देखो, यानी कभी भी तीन काल में ऐसा कभी नहीं होता कि जिसने अपने त्रिकाली शुद्धात्मा को जाना न हो, यानी अपने शुद्धात्मा को जानने वाले जीव हमेशा ही पाए जाएंगे, ये सम्य दृष्टि से लेकर केवल ज्ञानी तक। हाँ अब यहाँ बीच के कुछ गुणस्थान जो नहीं भी हो सकते हैं, अभी दूसरे तीसरे की बात छोड़ो, साधक जीवों की बात करेंगे, चौथा पांचवा छठा सातवां हमेशा रहेगा और तेरहवें वाले भी हमेशा रहेंगे, यानी उपदेश देने वाले सर्वज्ञ भगवान भी हमेशा रहेंगे और ये साधक जीव चौथे से सातवें तक वो भी हमेशा रहेंगे, श्रेणी वाले कभी कभी होंगे, इसको कहेंगे निरंतर मार्गणा और सांतर मार्गणा, अनेक जीवों की अपेक्षा।
यहाँ पर त्रिकाण में त्रिकाण ने जानना नो विरोध होता नहीं, तो यहाँ केवली की ही बात है, साधकों की नहीं,
त्रिकाण ने जानना रो बरोबर, अच्छा वो तीन काल को जानने वालों का बरोबर, हो बरोबर बरोबर, वो ज्यादा फिट बैठता है, यानी त्रिकाण ने यानी तीन काल को जानने वाले, यानी सर्वज्ञ भगवान, यानी त्रिकाल में सर्वज्ञ का कभी विरह नहीं होगा। शू कहूं त्रिकाण गेय छे, त्रिकाण को गेय कहा वो तो सर्वज्ञ को ही लेना है, मैंने वो त्रिकाली को लिया, वो त्रिकाल को लेना है, तो त्रिकाण मां त्रिकाण ने जानना नो विरह क्यारे होतो ज नथी, हा हा जेम त्रिकाण वस्तु छे, क्योंकि वो हम देखते ना वो अनादि अनंत तो काल पड़ा है, वो व्यवहार काल की बात है, काल द्रव्य की नहीं, काल काल द्रव्य तो नित्य ही है और उसकी समय भी आना, जो समय समय रूप परिणाम अनादि से अनंत काल तक रहता है, तो ये कहते त्रिकाण ये जो त्रिकाण वस्तु छे एम त्रिकाणी जाननार पण अनादि थी छे, अनादि से ही सर्वज्ञ भगवान की विद्यमानता है, तो वो जब सर्वज्ञ बने थे उसके पहले वो भी संसारी थे, ऐसा नहीं कि कुछ जीव पहले से संसारी और कुछ पहले से हम सिद्ध ही, ऐसा नहीं है, परंतु अनादिकाल पहले की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी सर्वज्ञ भी थे और संसारी भी थे, तो अनादिती चे। तीसरी लाइन, मनुष्य क्षेत्र में सर्वज्ञ नो अभाव कदी थतो नथी, क्योंकि वो जो अरिहंत रूप से जो है वो तो मनुष्य क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, बाहर तो होते ही नहीं है, सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में है, उनको भी सर्वज्ञ कहेंगे, परंतु यहाँ उपदेश देने वाले सर्वज्ञ की बात अपनी हो रही है, पण ए सर्वज्ञ नो विरह द्रव्य गुण पर्याय नो निर्णय करियो तो आत्मा ने जाने छे एम कहूं ए पण व्यवहार व्यवहार थी कथन छे, समझानू काय, पण ए द्रव्य गुण अने पर्याय जेवा भगवान ने देखे एवी मारी चीज द्रव्य परिपूर्ण गुण परिपूर्ण छे, पर्याय मा अल्पता छे अने अल्पज्ञता, ए पर्याय द्रव्य नो आश्रय करे त्यारे पर्याय ने गुण अभेद थईने सम्य दर्शन थाय छे, क्या कहते हैं, जिस पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया है वो पर्याय रूप से अभी उसको अलग से नहीं देख रही, ये मैं पर्याय हूँ ये द्रव्य ऐसा भी नहीं, मैं ऐसा हूँ इस तरह से उसका लक्ष्य है। तो क्या कहे, पर्याय ने गुण अभेद थी ने समय दर्शन थाय छे। जिस पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया है, लक्ष्य किया है, वो द्रव्य के साथ एकमेक होकर ये मैं कैसा हूँ तो मैं त्रिकाली हूँ, वो मैं अभी अल्प एक समय वाली हूँ, ऐसा वो अपना अलग अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वस्तु तो एक ही है ना। ये कह रहे पर्याय ने गुण अभेद थी ने समय दर्शन थाय छे, पर ये समय दर्शन के पर्याय के लक्ष्य से समय दर्शन नहीं हो रहा। त्यारे अरहंतना द्रव्य गुण पर्याय नु ज्ञान लक्ष्य में रहतु नहीं, समझानु कहे। यानी वो शुरुआत में तो उनके विचार में तो उनका द्रव्य गुण पर्याय का विचार चल रहा था, पर वो विचार छूटकर अपने गुण के साथ पर्याय अभेद हो जाती है, क्योंकि मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है, ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि मेरा भी ऐसा ही वगैरह, वो ऐसा कुछ वहाँ जल्प नहीं है, परंतु उनका लक्ष्य छूटकर अपने स्वभाव का लक्ष्य हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। परंतु उसके लिए वो सर्वज्ञता का निर्णय होना चाहिए, वो निमित्त से कार्य निमित्त उपादान का निर्णय होना चाहिए, क्रमबद्ध का निर्णय होना चाहिए। एक का निर्णय करो तो सारे के निर्णय हो जाते हैं। क्यारे अरहंतना द्रव्य गुण पर्याय नु ज्ञान लक्ष्य में रहतु नहीं, यानी उसका लक्ष्य छूटकर अपने स्वभाव का लक्ष्य हो जाता है। अहीं ए कहे छे के कारण परमात्मा, भगवान आत्मा कारण परमात्मा कहीं होतु ने। हमने एक प्रश्न आयो तो वीरजी भाई ना दीकरा आया था, वारिया गुजरी गया, आ काठियावाड़ में दिगंबर नो अभ्यास पहलो वेलो वीरजी भाई ने हतो, घना वर्ष थे। जामनगर में वीरजी वकील था, ये तो नेव इक्यानवे वर्षनी वये गुजरी गया। एमना एक दीकरा छे त्रिभुवन भाई, ये प्रश्न करियो, महाराज कारण परमात्मा कहो छो, कारण परमात्मा कहो छो, तो कारण होय तो कार्य तो होवू ज जोईए, आ कारण परमात्मा छे ने। तो कहते कारण परमात्मा त्रिकाणी भगवान आत्मा एक समय ने पर्याय थी भिन्न एवो कारण परमात्मा स्वरूप भगवान, एने कारण कहूं तो कार्य होवू जोईए, ये प्रश्न था। प्रभु कारण पूर्णानंद छे ए प्रतीति कोने आवी, जेने प्रतीति आवी एने कारण परमात्मा छे। प्रतीति उसकी श्रद्धा उसका विश्वास, परंतु केवल ऐसा कहने से विश्वास नहीं आ जाता है, परंतु उसका अनुभव होकर उसका विश्वास, तभी वो प्रतीति साची कहने में आई। जेने प्रतीति नथी थई एने तो विकल्प अने पर्यायनी प्रतीति छे। क्या कहा, जिसका अभी प्रतीति नहीं हुई, समय दर्शन नहीं हुआ, यानी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उसको किसकी प्रतीति, विकल्प की है और पर्याय की है, यानी अभी वो विकल्प में ही अटका हुआ है, और ज्ञान तो उस विकल्प को जानने में रुक गया, वो अपने को कहाँ जान रहा है, विकल्पों को जल्पों को जान रहा है। जल्प यानी वो शब्दात्मक हमारे जो विचार चल रहे, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, ये कथन जो यह हम अक्षरों में देख कर पढ़ रहे हैं और वही मन ही मन में वही दोहराते हैं, उसको जल्प कहते हैं। हम जो बोलते हैं वो बहिर्जल्प हुआ, और मन ही मन में चलता है वो शब्दात्मक भाषात्मक अपने विचार, वो अंतर्जल्प कहलाते हैं। तब तक उसका लक्ष्य है, यहाँ तो ज्ञान से ज्ञान को जानना है, उसके में कुछ शब्दों की या कुछ बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कोई कलर लाल है तो लाल है, ऐसे कहने की मन ही मन में क्या जरूरत है, बस देखो वो जो कुछ, उसको लाल शब्द भी नहीं मालूम होगा, बच्चों को नहीं मालूम है, ये पशुओं को नहीं मालूम कि ये लाल और ये हरा जो कुछ होता है, शब्दों से उसको बताया जा सकता है, तो उसको उसका क्या कहना मालूम नहीं है, तो क्या वो ये अलग है जाति का और ये ग्रीन जो है हरा है वो जुदा है, ऐसा उनको उसको ख्याल में है कि नहीं है। तो ये कहते हैं कि जब तक प्रतीति नहीं हुई तब तक विकल्प ने पर्यायनी प्रतीति छे, त्या कारण वस्तु, जो कारण वस्तु का जो कारण परमात्मा पूर्णानंदना नाथनी तो प्रतीति नथी। जानू काय, मार्ग बहु मुश्किल छे बापू। देखो है तो सहज सरल, सबसे सरल यही है, परंतु अब तक सबका उल्टा 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 अभी तक मान रखा है। जिस देह में जो देह धारण किया उस रूप में हूँ, पहले में पहले वो देह से आत्मबुद्धि छूटनी बहुत मुश्किल बात है, परंतु उसके ऊपर शास्त्र के अभ्यास से मैं इसे जुदा हूँ तो कहता है, परंतु वो पुण्य के विकल्पों में इतना रचा पचा है कि मैं उससे जुदा हूँ ये बात उसको ख्याल में नहीं आती। इन सब का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव का लक्ष्य करके उसी को जानते रहना है। सबसे सरल और ये जो कर सकता है बात यही कर सकता है, अन्य कुछ नहीं कर सकता। पर मैं तो कुछ हेरा फेरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने से होता है। ये कुछ नहीं कर सकता परंतु विकल्प मात्र करता है। ये मराठी में एक कहावत है, सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत। सरडा समझते हैं क्या कहते हैं सरड्याला गुजराती में? सेमेलियन नहीं, खिसकोली तो अलग, खिसकोली तो केवड़ो। अच्छा हाँ हाँ वैसा ही हाँ। तो इसे वो कहाँ तक जाएगा? तो जो कुंपने ने जो बाढ़ बांधते हैं ना वहाँ तक जाएगा फ्रेंड्स। हाँ हाँ मियाँ की मस्जिद तक, बराबर मालूम है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। ये तो एक कहावत है होते हैं। तो उसका अर्थ क्या है यहाँ? क्या ये जीव की यहाँ मर्यादा कहाँ तक जा सकती है? विकल्प तक। मैं इसका ये करूँ बस, ये उसके हाथ की बात है। वो भी अज्ञानी की बात है, वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, मैं कर सकता हूँ मानता भी है, परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी तो मानता ही नहीं है, परंतु अज्ञानी तो मानता है मैं परद्रव्य का करता हूँ, फिर भी वो कर नहीं सकता। तो उसकी दौड़ कहाँ तक है? विकल्प तक, ये कह रहे। तो उसी में वो रचा पचा है अनादि से, विकल्प ही करता रहता है और मानता भी है मैं पर का कुछ कर रहा हूँ, पर इससे भिन्न मेरा कुछ स्वरूप जुदा है, ये तो शरीर से जुदा मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर विकल्पों में ही रचा पचा रहता है। इसलिए कहते मार्ग बहु मुश्किल से। अगर समझ में आवे ट्रिक उसकी, रहस्य अगर ख्याल में आवे, तो इससे और आसान कोई चीज नहीं है। सबसे आसान जो कर सकता है वह जीव यही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। अपन एनी पोतानी वस्तु छे सतत सुलभ छे, क्या कहा? सतत अवेलेबल भी है, जिस समय उसका लक्ष्य करो वो तो अजरा हजूर है, क्योंकि अनादि से अनंत काल तक वैसी के वैसी पड़ी हुई है। एम पण कह्युं छे, क्या कहा? सतत सुलभ छे एम पण कह्युं छे, निरंतर निरंतर ने हर समय सुलभ प्रभु अंदर छे, भगवान बिराजे छे, तारी नजर त्या नथी। अन्य मतमा कहे छे मारी नजर ने आळसे रे, मैं निरख्या ने नयने हरी, मैं निरख्या न चाहिए न नयने हरी, ने नहीं न, यानी वहां अन्यमति में कहते साक्षात हरि यानी भगवान सामने आए हैं, परंतु मैंने आंख खोलकर उनको देखा नहीं, इतना मैं आलसी हूं। यहाँ हरि एटले आत्मा, पंचाध्याय में कहूं छे हरते इति हरि, जे मिथ्यात्व ने दोष नो नाश करे ए हरि। यानी हरने वाला उसको ए भगवान आत्मा, एने अहीं हरि कहे छे। ए हरि नयननी आळसे रे, नयननी आळसे ज्ञान नेत्र तो छे, पण ए ज्ञान नेत्रे पर ऊपर लक्ष्य करीने ज्ञान कर्युं पर प्रकाशक, तो ए पर प्रकाशक ज्ञान पर्यायनो स्वभाव नथी। स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक छे, छता एकलू परनु ज्ञान कर्यूं तेमा स्व भगवान आयो नहीं, माटे ए पर प्रकाशक ज्ञान मिथ्या छे। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर सबको जानना। वो स्व जानने में आ रहे पर उसने उसका कभी लक्ष्य ही नहीं किया, पर को ही जानते उतना ही मान लिया है, तो उसका ज्ञान मिथ्या हो गया। ए समय सारणी 70वीं गाथा में कहूं छे ने, पहला मां पहलू प्रभु शू करूं, सबसे पहले क्या करना, कुछ जाप देना, यात्रा करना, उपवास करना। तो अमृत चंद्राचार्य कहे छे, ये अमृत चंद्राचार्य जिन्होंने समय सार के ऊपर टीका लिखी है, पहला मां पहला आत्मा ने जानवो, क्या कुछ बोला હેલો ઉસમે સે
સ્પીકર જો લે બેટા ફોન પર
पहला मां पहला आत्मा ने जानवो। सबसे पहले क्या करना है, लोगों को लगता है ना ये हायर लेवल की बात है, ये हमारे लेवल की बातें कहो, ये समय दर्शन वो टॉप लेवल की है, कहते भी ऐसा और पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, ये बातें हमारे लिए मत कहो, ये हमारे लेवल की बातें कहो। क्या कहो, सदाचार से रहो, आपस में संप रखो, दूसरे को मदद करो, ये हमारे लेवल की बात लगती है। કે પહેલામાં પહેલા આત્માને જાણવો, ત્યાં આગળ પહેલા વિકલ્પથી નિર્ણય કરવો, ને ત્યાં આગળ પહેલા વિકલ્પથી નિર્ણય કરવો, નય નિક્ષેપથી નિર્ણય કરવો, જેમ 13મી ગાથામાં આવ્યું છે। દેખો વિકલ્પથી નિર્ણય કરવો ને એ જો અભી હમ દેખ રહે હૈ, સીખ રહે હૈ, વિકલ્પો કે દ્વારા નિર્ણય તક પહોંચના હૈ, અને પહેલે અપને જ્ઞાન મેં નિર્ણય સહી હોગા। वस्तु यानी वस्तु स्वरूप जो है भगवान आत्मा, जो आत्मा द्रव्य है, ये छह द्रव्य है, पांच अस्थि का है, जो कुछ ये बातें हो रही यहाँ पर, तो नए और निक्षेप से निर्णय करना। अभी सुबह भी हमारा जो विषय चल रहा है, आप आज आई थी कि नहीं आई थी? हाँ आना। हाँ शुरुआत में तो बहुत सरल विषय है, तो वहाँ निक्षेपों का और नयों का सब वर्णन होता है। निक्षेप क्या होते हैं और नए क्या होते हैं, देखो कोई भी चीज हमको अच्छी तरह से जाननी है तो जानने के लिए जो व्यवहार होता है वस्तु में, निक्षेप चार होते हैं, विस्तार से करेंगे तो छह भी होते हैं या अनेक भी होते हैं, तो मुख्य तो चार होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये निक्षेपों के नाम है। और उस एंगल से जानने वाले वो ज्ञान के पर्याय को जो है वो वस्तु में भेद करके जो जान रहे हैं, किसी एंगल से वस्तु को जान रहे हैं, उसको नए कहते हैं। अभी उसका अपना विषय नहीं है यहाँ पर, परंतु यहाँ नए और निक्षेपों से अच्छी तरह से, उसके बिना निर्णय नहीं हो सकता। जेम 13मी गाथा में आयु छे, 73मी गाथा में आयु छे, निर्णय करवो पछी विकल्प छोड़ीने अनुभव करवो। क्या कहा, देखो ये मार्ग है, निर्णय के बिना देने ही नहीं, हम बाद में विकल्प छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे, अपन अनुभव किसका करेंगे, निर्णय नहीं है, कुछ नहीं है, इस विश्व में द्रव्य कितने हैं, मैं कौन हूँ, पर क्या है, ये कुछ मालूम नहीं है, और बस अपने अपने स्थिर हो जाओ, ध्यान करो, और करेगा क्या, ख्याल में आती है, ये भ्रांति कहाँ शुरू होती है, निर्णय के बिना कुछ न कुछ करने धरने लग जाता है जी। यहाँ लिखा देखो स्पष्ट, निर्णय करवो पछी विकल्प छोड़ीने अनुभव करवो। ये निमित्त नहीं आया था तब तक कार्य नहीं हुआ था, तो क्या निमित्त ही कार्य करता है क्या, अभी तो वो निमित्ताधीन दृष्टि पड़ी है, और यहाँ अनुभव हो जाए, ये तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त ही दिखाई देता है, अंतरंग शक्ति तो बाहर से कुछ दिखती नहीं द्रव्य की। जैसे आपने वो एक बीज बोया जमीन के अंदर, तो बीज में वृक्ष होने की शक्ति है कि नहीं है, विद्यमान है, तो हमने उसको काट कर देखा, अंदर दिखती है वो शक्ति नहीं, तो हमने बीज बोया तो क्या दिखता है बाहर में, नहीं उसको अच्छी तरह से बोया, वो अच्छी जमीन थी, फिर उसको रोज पानी डाला, फिर वो धूप दिखाई वगैरह वगैरह, तो कुछ दिन में वो अच्छी फसल आ गई या उसका वृक्ष हो गया, दिखा क्या, निमित्त दिखा, अंतरंग की शक्ति नहीं दिख रही थी, वो तो हमें उसका एहसास हो जाता है, प्रतीति होती है कि वो बीज बोने से वृक्ष हुआ है, तो ये उसी की शक्ति अंदर पड़ी थी, उसमें से वृक्ष हुआ है, पानी से वृक्ष नहीं हुआ, पानी और धूप तो वो पत्थर पर भी पड़ रही थी, तो पत्थर में से कोई पत्थर का वृक्ष नहीं उगा है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। इसलिए पहले निर्णय बराबर होना चाहिए। त्या 70मी गाथा में तो सीधी बात करी, प्रथम तावत पहलो आत्मा जानवो, आत्मा ने जानवो एम कहू, त्या एम कहू छे के पोताना ज्ञाननी पर्याय में अनादि थी आत्मा जणाई रह्यो छे। देखो ये जब ऐसा सुनता है जी तो चौंक उठता है, वहां 70मी गाथा में समय सार में 17वीं गाथा में क्या बताया है कि आबाल गोपाल सभी को, आबाल गोपाल ने आबाल बाल से लेकर गोपाल ने कोई भी सामान्य भी जो कोई होता है उसकी बात है, यानी सभी जीवों को ये भगवान आत्मा हर समय उसके ज्ञान की पर्याय में अनुभव में आ रहा है, अरे अनुभव, हम उसके अनुभव के लिए तो तरस रहे, तो क्या कहा, अनादि थी आत्मा जणाई रहो छे, परंतु यही मैं हूं ऐसा ज्ञान उदित नहीं हो रहा। इसका लक्ष्य कहाँ है, पूरा परवस्तुओं के उसी ज्ञान की पर्याय में स्व को भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है। इसका पूरा लक्ष्य पर के ऊपर है और उसी की चकाचौन में, उसी की महत्ता में पड़ा है ये। तो स्व जानने में आते हुए भी उसने कभी उसका उसको नजरअंदाज कर दिया, ये उसकी भूल हो गई। तो कहते पोताना ज्ञान में पर्याय में अनादि थी आत्मा जनाई रहो छे, ये कौन सा आत्मा, तो कहते वो तो शुद्धात्मा कारण परमात्मा जिसको कहते, वो उसकी त्रिकाली आत्मा की बात है यह, वो जाना जा रहा है। समझाणो काय, केम के ज्ञान ने पर्याय नो स्वपर प्रकाशक स्वभाव छे, तो स्वप्रकाशक एनी ज्ञान पर्याय में आवे तो छे, पण एनी नजर त्या नथी। क्या कहा, भूल किसकी है, ये स्वयं की। शुं कहूं, 70वीं गाथा में के ज्ञानी जे पर्याय छे, तो ज्ञानी पर्याय में अज्ञानी ने पण बताया, ज्ञानी ने तो जाना है पण अज्ञानी ने पण आत्मा जाणवामां आवे छे, केम के ज्ञानी पर्याय नो स्वभाव स्वपर प्रकाशक होवाथी स्व प्रकाशक एमां आवे छे। यानी ज्ञान कैसा है, तो स्वपर प्रकाशक। तो क्या ज्ञानी का ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और अज्ञानी का पर प्रकाशक है, ऐसा है थोड़ी, नहीं, वो भी स्वपर प्रकाशक है। अनादि अज्ञानी ना ज्ञान मा पण स्व प्रकाशक जाणवा मा आवे छे एम कहे छे, छता एने इंस्पाइट ऐसा होने पर भी नजर उसकी क्या, एनी नजर यानी अपने को कैसा मान लिया, तो नजर पर्याय ने राग ऊपर हुआ थी, पर्याय में जणावा छता जाणवामां आवतो नथी, जणावा छता जाणवामां आवतो नथी। ये ऐसा मैं, यही मैं हूँ, ये ज्ञान उसका उदित नहीं हो रहा है, ऐसा उसको नहीं भासित हो रहा है। शू कीधु, समझाणू काय, पर्याय नो धर्म ज्ञानी पर्याय नो स्वभाव छे, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी तातय वचन भेद भ्रम भारी, गेय शक्ति दुविधा पर काशी निज रूपा पर रूपा भासी। ये तो उसमें आता है ना, समयसार नाटक में है ना, नाटक समयसार में बनारसी दास का वचन है। तो कहते निज ने पर ने जाणवु ए ज्ञानी पर्याय नु स्वरूप ज एवुं छे, स्व और पर को प्रकाशित करना है जानना, प्रकाशित करना है जानना, ये ज्ञान के पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है। अज्ञानीनी ज्ञाननी पर्यायनू सामर्थ्य आटलू छे, पण आवी ज्ञाननी पर्यायमां आत्मा जाणवामां आवे छे, छता नजर ए बाजू नथी। नजरमां राग अने पर्यायनी नजरमां पर्यायमां द्रव्य जाणवामां आवे छे, ए बधुं रोकाई गयुं। शुं कीधुं, समझाणुं काई, पर्यायमां राग थी नहीं, रागमां नहीं, ज्ञाननी पर्यायमां भगवान त्रिलोकनाथ अहीं आत्मा जे कहे छे ए एनो स्वभाव छे, माटे ज्ञानमां तो आवे छे, क्योंकि ज्ञान में झलकना भी उसका स्वभाव है ना, और ज्ञान के पर्याय का स्वभाव क्या है, उसको स्व को भी और पर को भी जान लेना। आवे छे छता इनी दृष्टि द्रव्य ऊपर नथी, यानी वो पर्याय में आने के लिए कुछ नहीं करना है उसको, हर समय उसके पर्याय में आ रहा है, परंतु उसका वहां नजर नहीं है, लक्ष्य नहीं है। तेनी दृष्टि पर्याय ऊपर हुआ थी, पर्याय नहीं जाने छे। अब क्या करना है, ये पर्याय का लक्ष्य जो जिसको यहाँ उसको परद्रव्य कहकर उसको छुड़ाया है, उसका आश्रय, उसका अवलंबन छुड़ाया है, किस लिए, क्योंकि वहां तो जानने में आ रहा है स्वद्रव्य, परंतु वहां उसकी नजर नहीं है, पर्याय को और राग को जानने में ही रुक गया है। कहते पर्याय ने जाने छे, पर्याय में द्रव्य जाणवामां आवे छे, ए वात भूली जाए छे। समझाणू काई, आवी वात छे भाई, वीतराग मार्ग अलौकिक छे, आ काई साधारण हुए, साधारण मानस नु काम नथी। हाँ, ऊपर का पैराग्राफ, दो प्रकार से दुविधा, हाँ हाँ हाँ, दुविधा आ गई, वो नहीं है, नहीं, ज्ञेय शक्ति दुविधा दो प्रकार से, विधा यानी प्रकार, द्विविध त्रिविध ऐसा, हाँ, निज रूप और पर रूपा भाषी यानी स्व को भी, हाँ, और पर रूप अभी आगे नीचे अहीं ए कहे छे कारण परमात्मा द्रव्य कर्म जड़ ज्ञानावरणी आदि जड़ कर्म थी रहित प्रभु छे। देखो यहाँ जीव द्रव्य जुदा है और कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, परंतु अनादि से ये बात हो गई है कि जीव और पुद्गल यानी कर्म वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कहो बंधे हुए, जिसको हम कहते हैं बंधे हुए, वो एक दूसरे में घुस नहीं गए, उनका अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा जुदा है, उसके अपने प्रदेश भिन्न है, फिर भी एक क्षेत्र में रहते हैं और उसका निमित्त बनता है, इसलिए वो बंधे है ऐसा कहेंगे, क्योंकि जो बंधे है ने जीव के यहाँ राग द्वेष के परिणाम हुए तो कुछ कारमाण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हो गई, वो वही उसी प्रदेश में रहती है, और जब वो छूट जाते हैं तो उसके निमित्त से जीव में कुछ बातें होती है, मोह राग द्वेष होता है या शरीर की रचना होती है, जो कोई बातें होती है तो उसके कारण वो कहते वो उसका फल मिला, ऐसा फल मिला वगैरह क्या कुछ नहीं, वो तो जीव उस रूप परिणमता है तो उसको फल मिला ऐसा कहने में आता है, वो उसका लक्ष्य करके वैसे परिणमित होता है अपने स्वयं की योग्यता से। तो यहाँ कहते हैं ये जो परंतु आत्मा कैसा है वो तो ज्ञान वर्णादि से रहित ही है। देखो ऊपर से वो दूसरा नया पैराग्राफ है ना, ज्ञानावरणीय आदि जड़ कर्म थी रहित प्रभु छे, यानी हम आप भी ये कर्मों से रहित ही है, हमारा स्वरूप कैसा है उनसे रहित है, तो उसके निमित्त से होने वाले राग द्वेष से भी हम रहित ही है। जैसे पानी जो अभी आप जाओ देखो नदी कोई भी बहती है तो कीचड़ मिक्स होने के कारण उसका रंग कैसा दिख रहा है, तो क्या ये पानी का कलर है? पानी तो निर्मल है, उसमें ऐसा कोई मैला कलर नहीं है, परंतु अभी वो उसके संयोग के कारण वैसा दिख रहा है। हाँ वैसे ही यहाँ जीव राग द्वेष में नहीं हुआ है, वो राग द्वेष जुदे है और जीव तो जानने वाला हो कायम त्रिकाल में वो जानने वाला ही द्रव्य है, इनसे रहित ही है, ये प्रतीति में आना चाहिए, वो दिखेगा नहीं ऐसा। राग तो जानने में आ रहा है, जानने में आ रहा है उसी समय वो राग से रहित है ऐसे श्रद्धा करनी है। जैसे वस्त्र अभी मैला हुआ है परंतु हम क्यों धोते हैं? क्योंकि हमको ऐसी प्रतीति, वस्त्र तो जुदा है और ऊपर जो मल लगा है उसको मलिनता है, वो जुदी है और जुदी हो सकती है, वो वस्त्र का स्वरूप नहीं है। ऐसे हम जो है वो चैतन्य स्वरूप है और ये राग द्वेष रूप मलिनता है वो हमारा स्वरूप नहीं है, ये ऊपर से वो औपाधिक भाव कहेंगे उसको, है वो पर्याय में है परंतु वो जीव का अपना परिणाम नहीं है, जीव में ऐसा कोई गुण नहीं कि उसको उत्पन्न करे, ऐसा कह रहे हैं, उससे भेद ज्ञान करना है, इसलिए उसका लक्ष्य छोड़कर अपने जो चैतन्य जो जानन देखन स्वभाव है उसका लक्ष्य करना है। यहाँ लिखा है ना, देखो ये द्रव्य कर्म है जड़ जिसको कहेंगे, अचेतन ज्ञानावरणी कर्म से तो प्रभु रहित है। अब भाव कर्म किसको कहना मालूम है आपको? तीन उस दिन शब्द बताए थे आपको, द्रव्य कर्म है ने आठ कर्म, भाव कर्म है ने, हाँ, मोह राग द्वेष उसमें सब आ गए, मोह राग द्वेष कहो शुभ अशुभ राग कहो बात एक है, ये भाव कर्म हुए। और तीसरी बात आती है एक नो कर्म, नो कर्म शरीर मन वाणी को नो कर्म कहते हैं। तो कहते ज्ञानावरणी आदि जड़ कर्म थी रहित प्रभु छे, भाव कर्म अने दयादानना विकल्प थी तो प्रभु भिन्न छे, अंदर मा त्रिकाली प्रभु भिन्न छे, दया दान भगवानी भक्ति। देखो क्या क्या लिया उसमें, सारे शुभ शुभ परिणाम सब लेना इसमें, जे भाव थी तीर्थंकर गोत्र बंधा है, ये आता है ना, आज 16 कारण आज शुरू हुआ ना, તો જે ભાવથી તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય એ ભાવ ભાવ કર્મ છે, કે વો બંધકે બંધકા પરિણામ હૈ ને, જિસકે કારણ કોઈ ભી પ્રકૃતિ બનતી હો, ભલે વો તીર્થંકર નામ કર્મ ભી ક્યો ના હો, ઇતની ઉત્કૃષ્ટ હૈ જિસકો લોગ તો ઉસકે લિયે હા હમે ભલે તો બંધે તો કિતના અચ્છા હૈ. અચ્છા ક્યા હમકો બંધે એસા બનતી નહી. એક બાત ભાવ કર્મ છે તેનાથી પણ પ્રભુ રહી છે. તો જે ભાવથી તીર્થંકર ગોત્ર બને, કોઈ ભી ભાવ હો, કોઈ ભી શુભ અશુભ ભાવ હો, એ તો બંધ કા કારણ હૈ, તો ઉસસે તો જીવ જુદા હી હૈ, એ ભગવાન આત્મા કી બાત ચલ રહી. આવા પૂર્ણાનંદ, પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ એ સ્વભાવ ભાવ કી બાત હૈ. પૂર્ણાનંદ આત્માની પ્રતીતિ અંદરમાં આવવી અને પ્રતીતિ થઈને અંદર અનુભવવામાં આવવું. આહા હા, પ્રતીતિ વ્યવહાર કહ્યું સમજાણું કાંઈ, એ દ્રવ્ય કર્મથી રહી છે. દ્રવ્ય કર્મ કા અર્થ ક્યા દેખા અભી અભી હમને, આઠ કર્મ. એ દ્રવ્ય ને પૂતગલ કર્મ લેના, એ જડ કર્મ લેના, આઠ જ્ઞાનાવરણાથી આઠ કર્મ. ભાવ કર્મથી રહિત છે, એની રાગ દ્વેષ કે પરિણામો સે રહિત હૈ, અને નો કર્મરૂપ ઉપાધિથી જનિત, એ ઉપાધિ હૈ, એ અમારા સ્વભાવ નહીં હૈ. નોકર્મ એને શરીર મન વાણી વગેરે ઉપાધિથી જનિત એને ઉસકે ઉત્પન્ન હુએ વિભાવ ગુણ પર્યાયો વિનાનો છે. દેખો ખરેખર તો રાગથી વિભાવથી તો રહી છે, પણ મતિ અજ્ઞાન આદિને પણ વિભાવ ગુણ પર્યાય કહી છે. એ પહેલી વાર વો તો હુઆ થા ને, હમને સબ દેખા થા, કેવલ જ્ઞાન કો સ્વભાવ ગુણ પર્યાય કહા થા, મતિ અજ્ઞાન વગેરે કો વિભાવ ગુણ પર્યાય કહા થા. નિયમસારમાં પહેલા શરૂઆતમાં ઉપયોગના અધિકારમાં તો સમ્યક મતિ જ્ઞાનને પણ વિભાવ ગુણ પર્યાય કહો. યહાં તો મતિ અજ્ઞાન કહા, પરંતુ વહાં વો અધૂરી પર્યાય હૈ, ઇસલિયે ઉસકો ભી વિભાવ ગુણ પર્યાય કહા થા. એનાથી પણ રહી છે જે મતિ જ્ઞાનમાં, એને જીસ મતિ જ્ઞાન મેં આત્મા અનુભવ મેં આ રહા હૈ, ઉસકો ભી યહાં ઉસકા ભી લક્ષ્ય છુડાયા હૈ. તો કે જે મતિ જ્ઞાનમાં સ્વ જાણવામાં આવ્યો, પણ એ મતિ જ્ઞાનથી પણ વસ્તુ રહિત છે. હા હા સમજાણું કાંઈ, જીસકા લક્ષ્ય કરના હૈ વો ઉસમે કુછ, એ પર્યાય બિના કા વાલા, ઉસકા લક્ષ્ય કરને વાલી પર્યાય હૈ, ઓર વો અભેદ હોકર ઉસકા લક્ષ્ય કર રહી હૈ, ઓર અભેદ હોકર વહાં સમય દર્શન હોગા એસા કહેંગે ભી, પરંતુ જીસકા લક્ષ્ય કરના હૈ વો ત્રિકાલ એક સ્વભાવ એક સદૃશ ભાવ હૈ. ઇસલિયે કે તે મતિ જ્ઞાનથી પણ વસ્તુ રહિત છે. મતિ જ્ઞાન એ સમ્યક જ્ઞાનનો અંશ છે, કેવળ જ્ઞાનનો એ અંશ છે. એકવાર એ પણ પ્રશ્ન થયો હતો કે કેવળ જ્ઞાનનો અંશ ક્યાં છે, એ ખોટું છે. કેમ કે કેવળીને તો ચાર ઘાતીનો નાશ કરીને પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થાય છે, એનો અંશ નીચે હોતો નથી. મોટી ચર્ચા ચાલી હતી કે તમે કેવળ જ્ઞાનનો અંશ કેમ કહો છો, મતિ જ્ઞાન અને શુદ્ધ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે, એ કેવળ જ્ઞાનનો અંશ છે. તો કેવળ જ્ઞાન તો ઘાતી કર્મનો નાશ કરીને પૂર્ણ થાય છે, તો શું આ પૂર્ણનો અંશ છે? હા સમજાણું કાંઈ, ક્યા કહેના ચાહતે, ઇસકો કેવલ જ્ઞાન કા અંશ ભી કહેતે હૈ, ઓર યે ધવલા જય ધવલા મેં ઉસકી ચર્ચા ભી આતી હૈ. જય ધવલમાં એક પાઠ આવ્યો છે કે એક સ્તંભ છે, સ્તંભ સમજશે, ખંબા પિલર, સ્તંભમાં હાસિયા હોય છે ને, એક હાસિયો જોવાથી આખો અવયવી છે, એનો એ અવયવ છે. આખા સ્તંભનો એક હાસિયો જોવાથી આખો સ્તંભ અવયવી છે, એની હાસ હોય છે ને, તમારે શું શબ્દ છે, ભાગ, એક ભાગ, એક ભાગ જોવે છે એ અવયવ છે. જે એને જોવે છે એ અવયવીને પણ જોવે છે, આહા હા, એ મતિ જ્ઞાનને પણ યથાર્થ જોવે છે, તો એ મતિ જ્ઞાન પણ કેવળ જ્ઞાનનો અંશ છે, અવયવીનો અવયવ છે. તો મતિ જ્ઞાનમાં પણ કેવળ જ્ઞાનની યથાર્થ પ્રતીતિ થાય છે. અને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે, એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો જેને મતિ જ્ઞાનમાં યથાર્થ આવ્યું તેને સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્માની પણ પ્રતીતિ થઈ ગઈ. ઉસકે બિના ઉસકો સમ્યક જ્ઞાન નહીં કહેંગે, ક્યોંકિ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ હૈ અંદર, ઇસકી ઉસકો પ્રતીતિ આ ગઈ. ઉસ મતિ જ્ઞાન કો યહાં કેવલ જ્ઞાન કા અંશ કહે દિયા હૈ. वो केवल ज्ञान का अंश इसलिए कहा कि देखो यहाँ बात है ना, वो एक भाग देखकर जैसे पूर्ण अवयव की प्रतीति हो जाती है. एक खंभे का उदाहरण दिया उसको, तो जिस मति ज्ञान में वो केवल ज्ञान की प्रतीति हुई ना, उसको ऐसा स्वभाव भाव है, स्वभाव की भी प्रतीति और सर्वज्ञ का भी निर्णय किया, सब उसमें केवल ज्ञान की, उसको केवल ज्ञान का स्वरूप भाषित हो गया है उसको, तो उसका वो अवयव उसका एक अंश बताए. एक अपेक्षावश ऐसा कथन आता है, वो पर्याय में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसका वो छोटा अंश है, ऐसा नहीं लेना है उसका. पर्याय में केवल ज्ञान नहीं है.
देखो जब कोई जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है तब उसको ये नक्की होता है ना कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ करके, तो उसको केवल ज्ञान की प्रतीति आई है ऐसा कहेंगे. हाँ बिल्कुल,
प्रतीति तो केवल ज्ञान की होती है ना, क्योंकि उसने स्वभाव में है ना, सर्वज्ञता स्वभाव है, और उसकी प्रतीति बिना उसको सम्यक तो कैसा.
यानी जिसको आत्मानुभूति हुई है, सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, उस जीव को मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसी खातरी हुई है क्या? नहीं,
पहली सीढ़ी वही तो है.
तो वहां पर ये कहा कि उसकी केवल ज्ञान की प्रतीति आई.
ऐसे कि जो मैंने केवल ज्ञान
स्वरूप की हूँ ना, उसने उसको निर्णय में आ गया ना, उसने उसको जाना भी, उसके अनंत गुणों का अभेद ऐसा पिंड का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव भी किया है. सर्व गुणांश वो सम्यक, वो गुणांश सर्व गुणों का अंश. अभी सर्वज्ञ ये भी गुण है कि नहीं, उसका अंश हो गया कि नहीं उसका. वो सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व सारे गुण है कि नहीं उसके, तो उसका अंश कहेंगे उसको. देखो आचार्यों की तो ऐसी है बात, कौन से अपेक्षा से कौन से एंगल से बात करना है वो समझना हम कोशिश करेंगे, नहीं तो पहले में पहले इसकी क्या वृत्ति क्या होती है उसको हमने ऐसा समझा इसको, ये हाउ इज इट पॉसिबल, पहले में पहले उसको विरोध करने की सोचता है, क्योंकि हमने जो मान के रखा है, हमने जो सीखा है, हमने तो अभी बेसिक प्राथमिक बातें सीखते सीखते अभी हम चले, परंतु एडवांस कुछ जो अपेक्षाएं हैं उसको भी समझना है ना. जैसे अभी ये नियम सार में कितनी उच्च कोटि की बातें हो रही, और जो हम साधारण द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप सीखते वो कुछ अलग बात है. यानी प्राथमिक अवस्था में जो हम सीखे हैं उसके ये ऊपर ऊपर के स्टेजेस है. हाँ ये नया पैराग्राफ 33 पेज पर नहीं, उसकी दो लाइन रहेगी नहीं ऊपर की. झीणी बात बापू, आहा हा, वितराग नो मार्ग अलौकिक छे. ये अलौकिक समझे, लोकोत्तर जिसको कहें, लौकिक नहीं है. लोको ये तो लौकिक जेवो बनावी दीधो छे, आ तो अलौकिक वातु छे. एम कहे छे, जो कारण परमात्मा द्रव्य कर्म यानी वो जड़ कर्म, आठ कर्म, ભાવ કર્મ એની શુભાશુભ ભાવ મોહ રાગ દ્વેષ, અને નો કર્મરૂપ એને શરીર મન વાણી રૂપ ઉપાધિથી જનિત વિભાવ ગુણ પર્યાયો, તો મતિ જ્ઞાનને પણ વિભાવ ગુણ પર્યાય કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ, રાગથી તો ભિન્ન છે પણ મતિ જ્ઞાન વિભાવ ગુણ પર્યાયથી પણ પ્રભુ તો ભિન્ન છે. હા સમજાણું કાંઈ, ઉપાધિથી જનિત વિભાવ ગુણ પર્યાયો વિનાનો છે, કેમ કે મતિ જ્ઞાનમાં પણ હજી જ્ઞાનાવર્ણીયનું નિમિત્તપણું છે, અને પોતામાં હીનપણું પોતાથી છે. વો હીન હિ દીર્ઘ ચાહીએ દોનો જગે. તેને ત્યાં વિભાવ ગુણ પર્યાય કહ્યું છે, એનાથી ભગવાન રહિત છે. ક્યુંકિ વો તો પૂર્ણ રૂપ સાગર ઓર યે તો અભી અધૂરી પર્યાય હૈ, ભલે વો સમ્યક હૈ પરંતુ અધૂરી હૈ. જે જ્ઞાનમાં વસ્તુ જણાય, કૌન સી જ્ઞાન મેં, મતિ જ્ઞાન મેં, ઉસકો સમ્યક મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન કહે રહે ને. તો જે જ્ઞાનમાં વસ્તુ જણાય, વસ્તુ જણાય ને અતિન્દ્રિય આનંદ કા અનુભવ હુઆ, મતિ જ્ઞાનમાં વસ્તુ જણાય, એ વસ્તુ વિભાવ ગુણ પર્યાયથી રહિત છે. એને વસ્તુ ઉસમે જાનને મેં આઈ, પણ વો વસ્તુ મેં યે જ્ઞાન નહીં ગયા હૈ, વો ઉસસે રહિત હૈ, પર્યાય હૈ. આગળ છે, મતિ જ્ઞાન આદિ ચારને વિભાવ ગુણ પર્યાય કહ્યું છે, ઉપયોગમાં આવી ગયું છે. પહેલી પુસ્તક મેં હમને દેખા હતા, ઇસકી ચર્ચા હુઈ થી વિસ્તાર સે. 10-11 ગાથામાં મતિ જ્ઞાનને પણ વિભાવ ગુણ પર્યાય કહી છે. હવે જાણવામાં મતિ જ્ઞાનથી આવે છે. સમ્યક મતિ જ્ઞાન જ્યાં અંતરમાં ઢળે છે. દેખો, એ મતિ જ્ઞાન કો પરોક્ષ જો કહા હૈ, વો પર કો જાનને કી અપેક્ષા વો પરોક્ષ હૈ. ક્યુંકિ વો ઇન્દ્રિયા વગેરે જો ઉસકા હૈ ના પરોક્ષપણા બનતા હૈ, ઉસકી સહાયતા સે નિમિત્ત બનતા હૈ ઉસકા, ઇસલિયે ઓર વો સ્પષ્ટ નહીં જાનતા, ઇસલિયે મતિ જ્ઞાન શ્રુતિ જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન કહેને મેં આતે. પરંતુ યહાં આત્મા કો અપને કો હી જાનના હૈ, તો વો પ્રત્યક્ષ હૈ. એને પ્રત્યક્ષ મેં યે જ્ઞાન ગુણ હૈ, દર્શન ગુણ હૈ, એસા અલગ અલગ નહીં દિખેગા, ઉસકો અનંત ગુણો કા અભેદ રૂપ સે જો આનંદ કા અનુભવ હોગા. તો સમ્યક મતિ જ્ઞાન જ્યાં અંતરમાં ઢળે છે, હા હા, પૂર્ણાનંદનો નાથ પ્રભુ જ્યાં બિરાજે છે, એના તળમાં જાય છે, એના પાતાળમાં જાય છે. જીસકો હમ કહે ગહેરાઈ સે અંદર મેં, જીસકો હમ કહેંગે ડૂબકી લગાઈ, આ પાતાળનો તો અંત છે. એને જો બાહ્ય પાતાળ જો ભૌગોલિક રચના હોતી હૈ ઉસકા તો અંત હૈ, કહ્યું હતું ને અહીંયા પાણીના પાતાળનો અંત છે. કેમ કે પાણી ગમે તેટલું ઊંડું હોય, આ દરિયો છે ને, ત્યાં કહ્યું નહોતું કે દરિયો બહુ ઊંડો લાગે છે, બહુ ઊંડો સમુદ્ર, પણ એ સમુદ્રના તળિયે તો નારકીનો 1000 યોજનનો પાસડો છે. સમજાણું કાંઈ, એ 1000 યોજનની નીચે નારકી છે. એટલે પાણીનો દરિયો કોઈ કહેતું હતું ફલાને ઠેકાણે બહુ ઊંડો, આપણામાંથી કોઈ કહેતું હતું પાસડા, એને પટેલ હોગા ના, જો હમ દેખતે ના, જો નહીં વો પટેલ કહેતે, અલગ અલગ લેયર્સ પર હૈ નરક, ઉસમે જો કોઈ ભી ભૂમિ જો હૈ ઇસમે નરક હોતે હૈ, તો ઉપર ઓર નીચે 1000-1000 યોજન કી જમીન છોડકર બીચ મેં નરક કે હોતે હૈ, તો યે 1000 યોજન કી ઉસકે ઉપર વો પાતાલ કા એન્ડ વહાં પર હૈ, ઉસકે નીચે 1000 યોજન કી ભૂમિ છોડકર ઉસકા સીમંતક બિલ હોગા, યે કહેના ચાહતે હૈ. યે સમુદ્ર કી ઊંડાઈ નહીં લેના ઉસમે, ક્યુંકિ હમને દેખો પાતાલ કી તો મેક્સિમમ જો બડે સબસે બડે પાતાલ હૈ લાખ યોજન વાલે હૈ, તો લાખ યોજન ઉસકી ડેપ્થ હૈ, ઓર ઉસકે નીચે વો સીમંતક બિલ હૈ, યાની વો વો પાતાલ ઓર ઉસકે અંદર જો જો, ક્યુંકિ ઉસકી દીવારે ભી પાસો પાસો યોજન વાલી હોતી હૈ, યે શાયદ 1000 યોજન કી ડિફરન્સ હોગી, ક્યુંકિ લાખ યોજન તક ગયા હૈ ઓર નીચે કે જો 84,000 યોજન હૈ જિસમે નરક કે સારે પટલ હોતે હૈ, તો ઉસકે અંદર ઉપર ઓર નીચે કી 1000 યોજન કી ભૂમિ છૂટી ગઈ છૂટ જાયેગી, વો કહેના ચાહતે. એ 1000 યોજનની નીચે નારકી છે, એટલે પાણીનો દરિયો કોઈ કહેતું હતું એ હો ગયા. મુમુક્ષુ કહેતે પ્રશાંત મહાસાગર અભી વો કહાં લગ જાવે, હા એ કહેતા તા અમેરિકાનો મહાસાગર બહુ ઊંડો, બહુ ઊંડો કહે છે, તો પણ એની નીચે નારકીનું સ્થળ છે. એ ઇતના ઉપર નહીં હૈ, ક્યુંકિ 1,84,000 હોતે ને, તો ઉપર 16,000 હૈ, ફિર 84,000 હૈ, ઓર ઉસકે નીચે જો હૈ, હા नीचे जो है 80,000, उसमें फिर वो नरक के बिल हो गए, क्योंकि ऊपर का खर भाग है, फिर पंख भाग है, और नीचे अबहुल भाग में नारकी है, और पाताल जो है लाख योजन ऊंडाई तक है, यानी ऊपर के दो भागों में मिलकर वो पाताल है, बड़े पाताल, सबसे बड़े पाताल। हाँ, तो पाताल ना तो अंत आवी गयो। अभी सबसे जो ऊंडे जो समुद्र है, जो स्वयंभू रमण भी क्यों ना हो, 1,000 योजन वाला ही है वो, उससे ज्यादा डीप नहीं है कहीं पर भी, और वो भी उसके सेंटर में हो गए, जहाँ कोई दोनों तट पर वो भूमि पर, यानी द्वीप के नजदीक उसके, तो हाँ कर्वेचर जैसा होगा ना, जैसे हम देखते हैं ना कहीं पर नदी भी है कांठों में, उसको तो हम चल के भी अंदर प्रवेश करते हैं। अभी यहाँ समुद्र तट पर हम जाते हैं तो चल के जाते हैं ना अंदर, घुटनों तक पानी आया, थोड़े और अंदर चले गए तो एक गहराई बढ़ती चली जाती, तो जहाँ सेंटर होगा वहाँ सबसे डीप होगा समुद्र, वो भी 1,000 योजन से कोई नहीं डीप, ये कहना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, 1,000 योजन की वो मछली और 1,000 योजन का डेप्थ स्वयंभू रमण समुद्र, ये कैसे पॉसिबल है? लंबाई है पर हाइट भी 500 जो वो योजन वाली है ना, तो उसके खाली दो, तो खाली उसके दो गुना ही है समुद्र क्या है? बराबर है। ये जो शरीर के जो लंबाई चौड़ाई जो गिनते हैं ना, वो ऑर्डिनरी योजन है, और ये जो द्वीप और समुद्रों की जो बातें होती है वो महायोजन है, जहाँ क्षेत्र की बात आती है वहाँ महायोजन। नहीं तो वो बेचारा इतनी पानी और उसमें ये कैसा में। हाँ देखो, यानी वो योजन के जो अंगुल, जिस अंगुल से वो बना है, वो उच्छेद अंगुल से बना है ऑर्डिनरी योजन, और वो प्रमाण अंगुल से बना है वो महायोजन। हाँ वही। हाँ, तो पाताल हो गया समय, ये नीचे का पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। हाँ, जावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, वाणी मस्तक नम सदा देत हो। विरेश भाई।